الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ایزان محترم شب عاشور کی مجلس سے زیادہ وقت ہمیشہ کی طرح مصائب کو دیتے ہیں، لیکن دو تین باتیں جو شب عاشور کرتے ہیں، کل کے جلوس سے متعلق آج الحمدللہ پروردگار عالم نے کے کرم سے، مولا کے کرم سے اور امام زمانہ کی حفاظت میں جلوس اپنی منزلوں پر، جتنے بھی جلوس پورے پاکستان میں الحمدللہ خیر خیریت سب. کل عاشور کا دن ہے، یعنی عاشورہ ہے اور آپ ہیں، عاشور کے میدان میں جانا ہے. یہاں میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں یا کبھی کبھی دیتا ہوں، کہیں نہ کہیں دے دیتا ہوں. بہرحال یہ مثال کہ مولا نے جب جناب محمد حنفیہ اپنے صاحبزادے کو جب جنگ کے فنون سکھاتے تھے نا، جنگ کے کیسے جنگ لڑی جائے، تو اس میں ایک آپ نے سکھائی تھی بات کہ جب میدان جنگ میں داخل ہو جاؤ تو اپنا کاسہ سر اللہ کے حوالے کر دیا کرو، کاسہ سر اللہ کے حوالے کر دو، تو نہ یہ تمہارا ہوگا نہ تمہیں اس کی پرواہ ہوگی، یعنی اللہ کو قرض دے دو بس، یہ اللہ کا ہوا. تو جب آپ کا ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو اس کی فکر بھی نہیں رہے گی. تو میں عاشور کے لیے ہر مومن سے یہ کہتا ہوں کہ جب عاشور کے دن گھر سے نکلو تو اپنی جان کو حسین کے حوالے کر کے نکلا کرو کہ اپنی ہے ہی نہیں تو فکر کا ہے کی. اپنی ہے انشاءاللہ کہ سب ٹھیک ہوگا. جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں انسانی امکان کی حد تک بھائی وہ سب ہو گئے، اس سے زیادہ دنیا کے بڑے سے بڑے ملک میں بھی نہیں ہو سکتے میں جانتا ہوں، یعنی جو محدود آپ کے وسائل ہیں اس ملک میں، جن وسائل میں اس سے زیادہ سیکیورٹی نہیں ہو سکتی کر لی، یہ انصاف کی بات ہے. میں وہ حکومتوں کے جو تعریفیں اور قصیدے روز پڑھا کرتا ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ یہ کیا کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو پولیس کے جوان ہوں یا رینجرز کے جوان ہوں یا ہمارے اسکاؤٹس ہوں یا ٹریفک پولیس کے ہوں یا گرلز گائیڈ ہوں، یہ سب بیچارے تن من دھن سے لگے ہیں. آپ جب صبح جائیں گے نا تو یہ دو دو تین دن راتوں کے تھکے ہوئے آپ کے لیے کھڑے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، حق نہیں ہے آپ کا کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، ان سے لڑیں کہ نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، جہاں سے منع کرے میں یہیں سے جاؤں گا، میں گاڑی یہاں نہیں کھڑوں گا، میں گاڑی کی کیا کیا تماشا نہیں. ڈسپلن، نظم و ضبط، وہ آپ کے لیے کھڑے، وہ بھی تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں نا بھائی، وہ بھی تو اپنے، ان کے بھی بال بچے ہیں، لہٰذا ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اپنے مومنین کے ساتھ ساتھ. تو میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم سب کے جانوں کی حفاظت فرمائے، دہشت گردوں سے سب کو محفوظ رکھے. تو یہ پولیس کے جوان ہوں یا رینجرز کے جوان ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں افسروں سے سروکار نہیں رکھتا، لیکن یہ جوان جو ہیں سپاہی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ یہ آگے ہوتے ہیں نا بھائی، یہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آگے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم نہیں چاہتے، ہم کب چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں ہو یہ. اور ایک مسئلہ اور بھی جس کی طرف نشاندہی کرتا جا رہا ہوں، لیکن ابھی ایک دو منٹ کے بعد پہلے یہ سمجھا دوں آپ کو یہ بات کہ کل جانا ہے جلوس میں، اطمینان سے جانا ہے، سکون سے جانا ہے. اور میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ مولائی عاشور کے دن بالکل سکون سے جلوس میں جاتا ہے، بچے بڑے سب میں نے دیکھے، خواتین دیکھے، کسی کے چہرے پہ کوئی خوف کوئی ہراس. آج عاشورہ وہاں ہو چکا نا کربلا میں، تو میں جب موقع مل رہا تھا صبح سے، بلکہ کل رات سے میں دیکھ رہا تھا، جب کوئی لائیو آ رہا ہے نا تو جب موقع ملتا تھا میں دیکھتا تھا آدھے ایک گھنٹے، تو میں یقین جانے میری عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ لاکھوں شہید ہو گئے وہاں، اس کے باوجود کسی چہرے پہ پریشانی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں. آپ میں سے جو گئے کربلا دیکھا آپ نے کتنا سکون ہے، نظر میں دیکھا کتنا سکون، کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنی جان کو اپنا سمجھتے ہی نہیں، وہ پہلے حسین کے حوالے کر کے بیٹھے ہوئے. تو بس کل آپ کو بڑے سکون سے، بڑے صبر سے، بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، آپ کا جلوس ہے، آپ منتظم ہیں. ہر مومن، ہر شیعہ منتظم ہے، یہ نہ سوچے کہ انتظام کوئی اور کر رہا ہے، بوتراب اسکاؤٹس ہوں، پاک حیدری اسکاؤٹس ہوں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں. سب کے نام لوں گا تو بہت سارے ہیں، میں سب اسکاؤٹس کو کہہ رہا ہوں، یہ دو نام تو میرے منہ سے نکل گئے، ورنہ قاسمی گارڈ ہے، ابوالحسن گارڈ ہے، امامیہ اسکاؤٹس ہیں، اور نہ معلوم کتنے سارے. پروردگار ان سب کی حفاظت کرے، ये सब बच्चे हमारे मासूम बच्चे, देखा छोटे छोटे बच्चे वर्दियां पहन के क़यादत करें, खुदा की कसम अजीब नज़ारा होता है। परवरदिगार उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। उनका ये एजाज़ है कि छोटा सा बच्चा विसिल बजाता है पूरा जुलूस चल पड़ता है, जब वो विसिल बजाता है पूरा जुलूस रुक जाता है। कहीं है दुनिया में ऐसी कौम? इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी इन स्काउट्स के साथ बदतमीजी ना करें, पुलिस के सिपाहियों के साथ ना करें, रेंजर्स के साथ ना करें, सब हमारी जिम्मेदारी है। बाकी हुकूमतों से हम खुद ही निपटते रहते हैं, हमें मालूम है क्या करना है इनके साथ ना, कैसे बात करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आपको अपने नज्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हुए, अव्वल तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने बता दिया कि इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है इस दफ़ा, लेकिन खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर अल्लाह ने कोई इम्तिहान रख दिया, जो मैं बार बार कहता हूँ, तो फिर इम्तिहान देना है ना। कैसे इम्तिहान देना? इम्तिहान के मैदान अगर आ गया तो हमारे पास एक ही नारा है, हाजिर है हुसैन, हाजिर है, हाजिर है हुसैन, हाजिर है, कोई मसला नहीं। एक लब्बैक या हुसैन का नारा लगता है,
या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक
या हुसैन,
लब्बैक
या हुसैन,
लब्बैक
या हुसैन,
लब्बैक
या हुसैन,
जज़ाकुमुल्लाह खैर।
परवरदिगार
आप सब लोगों को सलामत रखे। भाई इसी तरह आज़ादारी, इस सब कुछ इसी के लिए। अब तो खुदा का शुक्र है कि वो पर दुश्मन जो है उसको कोई कबूल नहीं कर रहा, जो ये कहता था, दावा करता था कि जनाब मैं इनको ऐसा बना दूंगा कोई इनसे हाथ नहीं मिला सकेगा, वो मारा मारा फिर रहा है कि कोई पार्टी तो कबूल कर ले, कोई कबूल ही नहीं कर रही डर के मारे, ना कोई सियासी पार्टी कबूल कर रही है, ना कोई मजहबी पार्टी कर रही है, दूर ही रहो हमसे, दूर ही रहो भाई, इनका दूरी ही अच्छी। हाँ, और एक बात और, वो जो हर साल कुछ लोगों के पेट में मड़ोड़ उठता है कि साहब देखिए 3-4 दिन मार्केटें बंद रहती हैं, शहर डिस्टर्ब रहता है, एम्बुलेंसें फंस जाती हैं, बीमार फंस जाते हैं, मरीज फंस जाते हैं, हैं, इससे लोगों के जज्बात को इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कल जुलूस है ना हमारा, पूरा पकड़ना शुरू हो गया ना, अब ये होगा शहर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहली बात तो ये कि 9 और 10 को आम तातील है, आम तातील है कि नहीं? छुट्टियाँ तो तू घर से निकल के उन्हें, तेरा निकाह तो वैसे ही टूट जाता है, तुझे किसने कहा कि तू जुलूस के रास्ते पे आ जा, पूरा कराची खुला हुआ है, किसी भी सड़क पे चला जा, क्या पूरे कराची की सारी सड़कें बंद होती हैं? कहाँ बंद होती हैं? नहीं, तुझे उसी सड़क पे जाना है जहाँ तेरा निकाह टूटेगा, या तो अपनी बीवी से बेजार हो गया है तू, जिस जिसका बीवी से झगड़ा होता है जुलूस में आ जाता है, क्योंकि वो कहता है जुलूस को देखने से, ताजी को देखने से, आलम को देखने से निकाह टूटता है, तो तू ऐसी जगह आता क्यों है? इसका मतलब जान के आता है तू, ताकि बीवी से जान छूट जाए, घर जाके कहते मैं तो आलम देख के आ गया, निकाह टूट गया, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
हुसैनियत
जिंदाबाद,
हुसैनियत
जिंदाबाद,
हुसैनियत
जिंदाबाद,
यजीदियत
मुर्दाबाद,
यजीदियत
मुर्दाबाद,
यजीदियत
मुर्दाबाद,
है हमारी दर्शगाह
करबला, करबला,
है हमारी दर्शगाह
करबला, करबला,
हक का सीधा रास्ता
करबला, करबला,
हक का सीधा रास्ता
करबला, करबला,
नारे
कुछ चैनल पे भी बैठे हुए, चैनल पे भी बैठे हुए बड़े खबीस किस्म के लोग बैठे हुए, इसी टॉपिक को छेड़ेंगे, रास्ते बंद, सड़कें बंद, तुझे किसने कहा निकलने को? ना निकलना उस दिन, हम निकल रहे ना, जुलूस का रास्ता बंद है ना, जुलूस की सड़क बंद है, बाकी कौन सी? दूसरी बात, ये आज़ादारान हुसैन है, खुदा की कसम आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई एम्बुलेंस आए और आज़ादार उसको रास्ता ना दे। मैंने मातमी दस्तों को देखा है, मातमी दस्तों को, जो दस्ते मातम कर रहे हैं उनको देखा है कि बीच में से, अपने बीच में से एम्बुलेंस को गुजारते हैं, पहले रास्ता दिलवाते हैं कि ये जख्मी है, ये बीमार, इसको लेकर जाओ। ये हमें हुसैन के मानने वाले हैं, हमें मालूम है कि बीमार की क्या अहमियत है, जख्मी की क्या अहमियत है। हमारे जुलूसों में कभी एम्बुलेंसें नहीं रुकती, वो तुम लोग हो जो एम्बुलेंसों से भी लोगों को उतार उतार कर गोलियां मार देते हो, एम्बुलेंसों से भी उतार उतार के गोलियां मार देते हो। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बात, और दूसरी बात, हमने कब कहा है कि बाजारों को बंद करो? किसने बंद कराई ये बाजार? ये जुलूस तो सैकड़ों साल से उठ रहे हैं, कभी बाजार बंद होते थे? मेरे सिनों साल के लोग जानते हैं ना कब बाजार बंद होते थे, बाजार तो खुले रहते थे, बाजार कब बंद होते थे? हम जिम्मेदार हैं बाजारों के बंद होने के? बाजारों के बंद होने का जिम्मेदार कौन है? किसने बम फाड़े, किसने खुद कुछ धमाके किए, किसने बाजारों को उड़ाया, किसने मस्जिदों को उड़ाया, किसने अज़ाखानों को उड़ाया, किसने जुलूसों पे बम मारे? तो कौन है जिम्मेदार? हमने कब का बाजार बंद करो? हालात किसने पैदा किए उसको पकड़ो। कौन है ये दहशतगर्द जो हालात खुद यहां तक लेकर आए? ये कर्फ्यू का समा हो, गलियां बंद कर दी जाएं, इनका जुलूस जाए और हम प्रोपेगेंडा कर सकें कि देखो जी इनकी वजह से जुलूस बंद, हमारी वजह से शहर बंद। हमारी वजह से शहर बंद नहीं होता, दहशत गर्दों की वजह से शहर बंद होता है। दूसरी बात बताऊं, पिछले साल अंजुमन ताजिरान जो है उनके सरबराह, नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाएंगे जिसको मैं कह रहा हूँ, उसने बात कही, अखबार में आई और एक चैनल पे उसकी तो क्लिप भी मौजूद है सबके पास, कि जिसने बताया कि इन 10 दिनों में यानी महीनों में इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती जितनी इन 10 दिनों में हुसैन के नाम पे स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली जाती है। सिर्फ तबर्रुक इतना, इतनी ट्रांजैक्शन पैसे की होती है कि इन 3 दिन की छुट्टियों में भी तबर्रुक जितना खरीदा जाता है, जितना तकसीम किया जाता है। 10 महीने की मईशत एक तरफ और 10 दिन की मईशत एक तरफ। लोगों को बहकाते हो?
बाबा दे बुलंद नारे सलावत,
अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। लोगों को बहकाते हो कि बाजार बंद, दुकान बंद, जाके पूछो। सारा साल में उनको इतना आमदनी नहीं होती जितनी हुसैन के नाम पे उनको आमदनी होती है। इतना तबर्रुक बढ़ता है, लाखों लोग तबर्रुक, कल हुसैन का तबर्रुक लेंगे, उसके बावजूद भी जो तबर्रुक लाया होगा बचा के ले जाएगा, कहेगा फिर बच गया। इतना बांटती है ये कौम हुसैन के नाम पे। ये कौम नहीं, सारे मुसलमान लगाते नहीं लगाते, सभी ने न्याजें बांटते हैं कि नहीं बांटते हुसैन के नाम पर। लिहाजा लोगों की राय आमवा को यानी उनके जहनों को खराब करने के लिए 3 दिन मार्केट बंद होती है। इस 3 दिन में जितना बिजनेस होता है ना, 30 दिन में नहीं होता। अब भूखे मर जाओगे? एक मोहल्ले में ऐसे ही हुआ था, लड़ बैठे थे, आज तक रो रहे हैं कि क्या हुआ, हमारा तो कारोबार ही खत्म हो गया। खुद ही कहते हैं कि रोज सुबह शाम इतनी बड़ी बड़ी मजलिसें, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अशरे होते थे, मिठाइयों की दुकानें, पकवानों की दुकानें सब चलती थी। जब से झगड़ा हुआ नहुसत पड़ रही है वहां पे, आज तक नहुसत। हाँ, नहुसत पड़ रही है। क्यों? हुसैन का तबर्रुक जो बंद हो गया। पूछो इन लोगों से जिनके कारोबार चल रहे हैं। हम तबर्रुक लेते वक्त मजहब और मसलक नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि अल्लाह रसूल का मानने वाला है ना, मुसलमान है। हम में तासुब नहीं है। कितनों के घर करोड़पति अरबपति हो गए अरे हुसैन के तबर्रुक पे पल पल कर। तो ये सोचो, उसके बाद बात करो कि हुसैन की आजादारी के नाम पे कितनी ट्रांजेक्शन होती है अरबों खरबों रुपए की, और 2 महीने 8 दिन में जितनी होती है उतनी तो पूरे साल में नहीं होती। और सड़क बंद, बाजार बंद, नहीं मसला ये नहीं है। सारा साल खुद रैलियां उठाओ, बिल्कुल सही है। सड़कें बंद करो, सही है। धरने दो बंद, सही करो, वो बिल्कुल सही है। माल रोड बंद कर दो, सही है। तनख्वाह नहीं मिली, सड़कें बंद। डिग्री नहीं मिली, सड़कें बंद। फेल कर दिया, सड़कें बंद। फेल क्यों किया? मैंने भले सादा पर्चा दिया हो, है ना, आजकल मुजाहरे हो रहे हैं ना, फेल कर दिया साहब। फेल करने पर सड़कें बंद। 365 दिन में एक दिन ऐसा नहीं जब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सड़कें बंद ना होती हो, किसी पे तकलीफ नहीं होती। माल रोड बंद, सदर बंद, ये बंद, वो बंद, हाईवे बंद, मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद। और कल एक चोर डाकू रिहा हुआ, 8 मुहर्रम को पूरी रैलियां उठा रहे हो, शादियां ने बजा रहे हो, किसी को तकलीफ नहीं हुई कि सड़कें क्यों बंद हो गई एक चोर के लिए। अरे आप क्यों डर रहे हो? मैं कह रहा हूं भाई,
हैदरी 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 बाबा दे बुलंद नारे सलावत।
किसी मुल्ला को, किसी मौलवी को परेशानी नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई कि कल जो सड़कें बंद हुई एक चोर का इस्तकबाल हुआ, डाकू का, कौम का माल हड़प कर जाने वाले का। कैसे बदमाशी के साथ आ रहा है, फिर लूटूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जो जो मेरे खिलाफ बोला था मेरा भी नाम है उसकी लिस्ट में। फिर आप बेफिक्र रहे, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं तो उसी वक्त बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता हूँ कि जब पता चले सामने कोई बड़ा है। छोटों से क्या लड़ना है, छोटों के लिए क्या बात करनी, छोटे तो मेरे भाई हैं, उनसे मैं थोड़ी लड़ता हूँ। मजा आता है टक्कर का, जब ये ऊपर वाले बदमाशों से बात करो, जब इन लुटेरे डाकुओं को ललकारो। सीखा यही है भाई, और क्या सीखा है। इस फर्श के ऊपर ये भी नहीं सीखा तो फिर फायदा क्या हुआ इस फर्श पे आने का मेरे। सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई बात? नहीं, उन रैलियों से तकलीफ नहीं है, उन जुलूसों से तकलीफ नहीं है, उन धरनों से तकलीफ नहीं है। तकलीफ बस इस बात की है, या नाना के जुलूस पे या नवासे के जुलूस से चिड़े। सिर्फ दो जुलूसों पे इनको बड़ी तकलीफ। शहर डिस्टर्ब हो गए, मुल्क डिस्टर्ब हो गए, कारोबार बंद हो गए। वैसे ही आम तातीले कारोबार तू क्या करता है, कौन सा कारोबार कर रहा है। और जिनको कारोबार करना होता है ना, जुलूस के साथ साथ ठेले लगे हुए होते, इतना वो एक महीने में नहीं कमाते जितना बेचारे इमाम हुसैन के अजादारों के से, और इमाम हुसैन के नाम पे उनको एक दिन में उनको इतना मिल जाता है। कोई तुझ पर इसीलिए नहुसत पड़ रही है कि तूने कभी तबर्रुक का मजा चखा ही नहीं है, कि हुसैन के तबर्रुक का जायका क्या है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हम तो फख्र करते हैं अपने पर, अपने बच्चों पर, के अपने हुसैन के तबर्रुक पे पलके जवान हुए। इससे पाक गिजा और कौन सी हो सकती है, इससे पाक गिजा कोई नहीं। तो ये प्रोपेगेंडा चलना शुरू होता है ना, और चैनल्स पे प्रोग्राम, तो याद रखिए, जवाब याद रखिएगा। इसलिए आपके सामने सारी बातें करता हूँ, इस प्रोपेगेंडे का तोड़ आपको दे के जाता हूँ कि इनको इसी बात से चिड़े। बस नाना का जुलूस, नवासे का जुलूस, 365 दिन अपनी रैलियाँ उठाओ, हर जुमे योम एहतजाज मुल्ला का, सड़क बंद करके बैठ जाएगा मौलवी, इलेक्शन हार गया हड़ताल, सीट नहीं मिली हड़ताल, जो पहले सीट थी वो छिन गई हड़ताल, घर भी छीन लिया, बेघर कर दिया बेचारे को हड़ताल। समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा आगे। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात?
बाबा जी बुलंद नारे सलावात।
कैसा होता है रहनुमा, कैसा होता है रहबर। ये बात हो गई खुद ब खुद, बस चंद जुमले मजमून के मुताबिक मैंने किया कि शब आशूर आप जानते हैं, हम ज़्यादा मसाइब को देते हैं, ये रात ही ऐसी है, शब ऐसी है। और लेकिन अब वो जो मजमून छेड़ा था, दो तीन मिसालें तो उसकी देते चले जाए ना। सुलेमान को कितनी बड़ी सल्तनत दी कि उससे पहले किसी को नहीं दी, दलील क्या है क्यों दी, वरना ये होता कि बातिल के ताकतों ने, फिरौन ने, नमरूद ने, शद्दाद ने अपनी ताकत से कितनी बड़ी सल्तनतें बनवाई। अल्लाह के नुमाइंदे को तो किसी को इतनी बड़ी सल्तनत नहीं मिली, तो अल्लाह ने सुलेमान को वो सल्तनत देकर बताया कि हम जो सल्तनत देते हैं वो ऐसी सल्तनत होती कि सिर्फ जमीन पर नहीं, सिर्फ इंसानों पर नहीं, चरिंद परिंद दरिंद जिन्नात ये सब ताबे होंगे जिसे मैं सल्तनत दूंगा। पहले भी ऐसी सल्तनत किसी को नहीं, माबूद बाद में भी नहीं। कौन मुरादे बाद में, सिकंदर आजम हो और कोई, बड़े बड़े गुजर गए दुनिया में, बड़े बड़े फातह नेपोलियन गुजरा, और पता नहीं क्या 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 नाम पढ़ते चले जाएंगे, तारीख में आते चले जाएंगे, और इस्लाम के मुजाहिद भी नजर आएंगे आपको, बड़े बड़े इस्लामी जंगें, किस किस में इस्लामी जंग हुई हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने के लिए, इब्राहिम लोधी और जहीरुद्दीन बाबर में मुकाबला हुआ। अब पता नहीं इनमें मुसलमान कौन था, हिंदू कौन था, कोई पता हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। जब तारीख लिखते कि हिंदुस्तान में, तो सारी लड़ाइयाँ मैंने जो देखी कि आने के बाद से सारी लड़ाइयाँ तो आपस में इनकी होती रही। पहली बार तो कब्जा कर लिया, उसके बाद कौन सी इस्लामी जंगें हुई, इधर जहीरुद्दीन बाबर उधर इब्राहिम लोधी, इनमें काफिर कौन है मुसलमान कौन है भाई, को बता तो दो मुझे ज़रा। लेकिन नहीं पता चलता साहब कि इनमें शेर शाह सूरी हुमायूं कौन मुसलमान है कौन काफिर है, इस्लाम, इस्लामी जंगें। इस्लाम आया होता तो पूरा हिंदुस्तान आज मुसलमान होता, जमीनों पे कब्जा करना था, मुल्कों पे कब्जा करना था, साम्राज्य अजीम थे, साम्राज्य बनकर आए थे। इस्लाम फैलाने वाले और थे, वो बुजुर्ग और थे, वो उलमा और थे, ये जालिम और जाबिर बादशाह, ये मुलुकियत, ये बादशाह, ये आमिर, ये डिक्टेटर, ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहलाने वाले, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक। बाप बेटे को मारता था, बेटा बाप को मारता था, भाई भाई को मारता था, और फिर कुरान लिख के रोजी बनाता था। बच्चों को नहीं पता किसको कहा है मैंने, वो जिसको सबक में पढ़ाते ना, मुफ्ती हजरत औरंगजेब आलमगीर जी, मुफ्ती हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े सीधे साधे थे। रोजी कैसे कमाते थे? अल्लाह की किताब लिखते थे, उसका हदिया लेते थे, उससे रोजी कमाते थे। ये मुगले आजम जिसने 50 साल हुकूमत की है, मुगले आजम तो अकबर को कहते हैं लेकिन ये भी मुगले आजम से कम नहीं था। और ये नहीं बताते कि अपने बाप की आंखों में सलाइयां फिरवा के आगरे के किले में कैद करा दिया था। अपने बाप के शहाबुद्दीन शाहजहां को मरने से पहले, उसके मरने से पहले कब्जा किया। क्यों? कि शहाबुद्दीन शाहजहां ने वलीहद बनाया था किसे? दारा शिकोह को। दारा शिकोह इससे काबिल था, आलिम था, फाजिल था। भाई को मारा, जिन भाइयों ने साथ दिया उनको भी मारा। शहजादा शुजा को मारा, सबसे आखिर तक इसका साथ देता रहा शहजादा मुराद, उसको मारा। तीन भाइयों का कातिल, बाप का कातिल, मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर। आज तक उन्हीं मुफ्तियों से वास्ता पड़ रहा है हमारा तो भाई। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर अपने खाना। ये अब मैं बता रहा हूं ना आपको कैसा ये है। सारी हुकूमतें बाद में आती, कहा कि किसी को नहीं दे, यानी अल्लाह जो हुकूमत दे रहा है बता रहा। ऐसा नहीं है कि जनाब सुलेमान के बाद किसी अल्लाह के नुमाइंदे को ऐसी हुकूमत नहीं मिलेगी। नहीं, जनाब सुलेमान को हुकूमत देकर बताया कि जब हम अपने नुमाइंदों को देते हुकूमत तो शक ना करना उसके ऊपर कि हम कैसी हुकूमत देंगे उसे, किस तरह की हुकूमत देंगे, किस तरह के इख्तियारात देंगे। लेकिन कैरेक्टर क्या है? सल्तनत इतनी बड़ी है जिसका कोई कनारा नहीं है। सुलेमान की सल्तनत का बाद में तो मुल्क सबा भी आ गया था ना, बिल्किस की सल्तनत भी शामिल हो गई थी ना, मलका बिल्किस की वो भी शामिल हो गई थी जनाब सुलेमान की सल्तनत में। लेकिन कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या है? खाना जब खाते थे ना सुलेमान, ताकि याद रहे कि अल्लाह के सामने मेरी हैसियत क्या है। जब खाना खाते थे तो मोहताजों के साथ, मोहताजों के साथ बैठ के महल में नहीं खाते थे। और ये कहते थे, जब मोहताज डरते थे ना कभी कभी, डरते थे कि सुलेमान आप हाकिम, आप बादशाह, बहरोबर के बादशाह, जिन्नो इंस के बादशाह, आप कहां हम कहां कहते हैं। नहीं, जनाब सुलेमान के जुमला मशहूर है, लिखा हुआ है किसस अंबिया में, कहते थे कि नहीं, एक मोहताज दूसरे मोहताजों के साथ बैठ के खा रहा है। बताया कि मैं मोहताज हूं, गनी सिर्फ अल्लाह की जात है। गनी किसकी जात है? सिर्फ अल्लाह। मैं मोहताज, फिर यही आपको नजर आती है ना बाद में सीरत, नजर आई अली का लाल हसन मुजतबा। तुम जाहिरी तौर पे किसी को भी हाकिम बना लो, अल्लाह जिसे बनाता है एक ही किरदार होगा सबका, सबका एक ही किरदार। फकीरों के पास से गुजरे थे, देखा बहुत बेचारे जाहिर फकीर कैसी गिजा खाते हैं, बहुत ही मामूली, बैठ गए। उन फकीरों ने दावत की, सलाम दो, बैठ गए, मैं तुम्हारे साथ खा लूं खाना। बैठ के खाना खा रहे हैं वो फकीर, बड़े हैरान कि अली का लाल हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है। खाना खाया, ये होता है इज्जत नफ्स को बचाना किसी की। यही सीखो माशरे में, किसी के साथ नेकी करके जताओ मत, किसी गरीब की मदद करके जताओ मत। सीखो हसन से, अली से, अली की औलाद से सीखो। तो इमाम हसन क्या फरमाते हैं उनसे, जब खा चुके उनका कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हारा मेहमान बनाऊँ, मैंने तुम्हारे साथ खाया है, अब हक ये है कि तुम मेरे मेहमान बनो। ये होता है मदद करने का तरी, अब तुम मेरे मेहमान बनो। देखो मैंने तुम्हारी दावत कबूल की, तुम्हारे साथ बैठ के खाया है, अब हक ये है मेरा कि तुम मेरी बात मानो और मेरे मेहमान बनो। उन सब मोहताजों को, फकीरों को लेकर आ रहे अपने घर। क्यों? हसन का दस्तरखान है, कयामत तक कहलाएगा दस्तरखान हसन, ताकि गरीब आदमी इज्जत से आके खाए, भीख समझ के नहीं खाए। जानता है कि मौला का दस्तरखान है, हर भूखा आएगा। इज्जत नफ्स बचाओ। कितनी मजलिसों में मैंने कहा कि तबर्रुक बांटने में खबरदार, जो कभी तमीज करो कि पेट भरों को पहले देना है, खानदान वालों को पहले देना है, अमीरों को पहले देना है, ये मेरा रिश्तेदार है पहले देना, नहीं, ये गरीबों का हिस्सा है तबर्रुक। अपने रिश्तेदारों को बाद में भिजवा दो, खत्म हो जाएगा, खत्म हो, यही डर है ना कि तबर्रुक खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, बाद में भिजवा देंगे, तुम्हारे अजीज है ना, बाद में भिजवा देंगे उनको, भाई तुम्हारे घर आ जाएगा। लेकिन ये जो बेचारा आया है ना, ये मौला का तबर्रुक लेने आया है। ये क्या लेने आया है? इसी का तो हक है, तबर्रुक रखा ही इसीलिए गया, इसका हक है। तो अमल करके बताया मासूमीन ने। आइए اب مولا جب ظاہری امارت ہے, ظاہری عہدہ, بس کے بعد میں مصائب کی منزل پر آ جاؤں گا, لیکن یہ درس دینا آج کے حکمرانوں کے کانوں میں ڈالنا میرا فرض ہے, چاہے ان کے کانوں سے دل میں اترے نہ اترے, دماغ میں جائے نہ جائے, میرا کام ہے یہ بتانا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے میں بڑے محتاط ہو کے چل رہا ہوں, کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ کدھر جا رہے ہیں, کیا کہہ رہے, کبھی کچھ بیان, کبھی کچھ بیان, کبھی کچھ بیان. اب ایک تازہ بیان جو آیا ہے اس نے تو میرے بھی ہوش اڑا دیے ہیں, لیکن خیر پھر کبھی صحیح وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ ناچیز اسی لیے محتاط رہا, احتیاط کرتا رہا, کیونکہ مجھے شک تھا, مجھے کچھ کچھ شک ہو رہا تھا کہ یہ کسی اور پلڑے میں جا کے وزن گرے گا, اور اسی پلڑے میں وزن جا کے گر رہا ہے. اللہ خیر کرے ہمارے لیے بھی, اور اس وطن کے لیے بھی, اس ملک عزیز کے لیے بھی, کہ ایک بار پھر کہیں کسی سامراجی ایجنٹوں کے جا بچھائے ہوئے جال میں پھر سے نہ پھنس جائیں, بڑی مشکل ہو جائے گی. ہمارے لیے نہیں, ہم تو عادی ہیں, ہم تو ہر مشکل سے نکلنے کے عادی ہیں, اس ملک کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, اس ملک کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, بتا رہا ہوں. آئیے, والی بصرہ عثمان ابن حنیف اور سہل ابن حنیف دونوں بھائی ہیں نا, اور دونوں غریب ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, بالکل غریب طبقے سے. عثمان ابن حنیف کو جب والی بنایا ہے نا بصرے کا, تو بیٹا آیا تھا دوڑا دوڑا, یہ کہاں کام کرے تھے جانتے ہیں, کیچڑ میں پیر کڑے میں, اور جناب کیچڑ میں کام کرے تھے, مزدوری کر رہے تھے, ہاتھ میں بیلچا تھا, کدال تھا, پھاوڑا تھا. بیٹا دوڑا دوڑا آیا, کہا تم تو بابا مبارک ہو, مسجد سے آ رہا ہوں, تمہیں بصرے کا گورنر بنا دیا, امیر المومنین نے تمہیں بصرے کا والی بنا دیا. تو اتنا غصہ آیا کہ اپنے بیٹے کی پٹائی کر دی, تو جو گورنر ایسا نظر آتا ہے, یہ گورنر ہوتا ہے, میرا حلیہ دیکھ رہا ہے میں گورنر ہوں, ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے بڑھاپے میں, کہہ رہا مجھے مار کیوں رہے ہو, میں سن کے آ رہا ہوں, علی نے اعلان کیا, اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں. اور جناب عثمان بن عفان کہہ رہے ہیں گورنر ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ نا کہ گورنر کیسا ہوگا, لہذا میں کہاں گورنر. پھر معلوم کہ نہیں, علی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کون اس قابل ہے, کون اس قابل ہے, بنایا. لیکن ایک غلطی ہوئی, وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, بہت بڑی غلطی ہوئی. ہمارے لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں, اور ایک غلطی کرتے ہیں پھر اس دلدل میں گرتے چلے جاتے ہیں, اس دلدل میں گرتے چلے جاتے ہیں, پھر وہ ہمارے نہیں رہتے, پھر وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں. وہ کیا غلطی کی؟ بصرے کے سرمایہ داروں نے دعوت دی عثمان بن حنیف کو کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب سرمایہ داروں نے دعوت کی, والی بصرہ کی, تو کسی غریب کا تو گزر بھی نہیں, وہاں غریب کہاں سے گزرے گا. لیکن مولا کی بھی سی آئی ڈی تھی, یاد رکھیے ہر حاکم کے لیے ضروری, یہ خفیہ آنکھیں کہلاتی ہیں نا, یہ نہ ہو حکومتیں اور ملک نہیں چلتے. ہر وقت بس زن نہ رہا کیجیے, یہ خفیہ آنکھیں نہ ہوں تو نہ معلوم کیا سے کیا ہو جائے. تو ہر حکومت کی خفیہ آنکھیں, تو مولا کی خفیہ آنکھیں تھیں, جو ہر والی کے, جو مولا نے اپنے خطبے میں بھی کہا ہے ان کے لیے کہ یہ خفیہ آنکھیں, یہ میری دست و بازو ہیں. وہ پوری خبریں بھیجتے تھے نا مولا کو, مولا کو خبر مل گئی کہ ایک ایسی دعوت میں گئے ہیں کہ جس میں غریبوں کا داخلہ منع تھا, غیظ میں آ گیا. غریبوں کا مولا, یتیموں کا مولا, بیواؤں کا مولا غیظ میں آ گیا. لیکن جانتے ہیں کہ عثمان بن حنیف ٹھیک آدمی ہے, مگر نصیحت کرنا ضروری ہے, بھائی معصوم تو نہیں ہے نا, ہو جاتی ہے غلطی, پہلی غلطی پہ ٹوک دیا, یہ میں نے کیا سنا. تمہیں کیسی دعوت میں گئے جہاں غریبوں پر دروازے بند تھے, سرمایہ داروں کے پاس گئے, تو جب ان کا کھانا کھاؤ گے تو مروت میں جب وہ کہیں گے کہ ذرا سا یہ ٹھیکہ, سمجھا رہا ہوں, یہ ٹھیکہ, یہ ذرا سا کام, یہ دستخط, یہ میرا بچہ, یہ میرا بھانجا, یہ میرا بھتیجا, یہ بینک, میٹرک پاس ہے بچہ, لیکن آپ والی ہیں, گورنر لگا دیجئے اسٹیٹ بینک کا. بھائی ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا, یہاں تو آپ جانتے ہیں کوئی چیز عجوبہ نہیں ہے, پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, آپ مذاق سمجھ رہے ہیں. ارے کچھ نہیں پتا, آنے والے زمانے میں یہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. میٹرک پاس ہے تو کیا ہوا سرکار, بڑے دوبارہ آپ کو مل گیا چانس, اس کو گورنر تو لگا دیجیے, آدھا آپ کا آدھا ہمارا, آدھا آپ کا آدھا ہمارا, ایسے ہی ہے. تو سرمایہ داروں کی دعوت میں گئے جہاں غریبوں کا داخلہ بنا تھا, مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی عثمان, تم میرے خاص آدمی ہو, خدا کی قسم اے ابن حنیف, تمہارے مولا نے اس دنیا سے دو پرانے لباسوں اور دو روٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیا ہے, قسم کھا کے کہہ رہے مولا, دو پرانے لباس اور دو وقت کی دو روٹیاں, اس کے سوا میں نے تمہاری دنیا سے کچھ بھی نہیں لیا. اور یقیناً तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं बन सकते। कौन बन सकता है अली? अली खुद कह रहे कि तुम ऐसा नहीं बन सकते। लेकिन ए इब्ने हुनैफ, ज़ुहद व पारसाई के रास्ते में साबित कदम रहकर मेरा साथ तो दो, यानी थोड़ा सा तो चलने की कोशिश करो मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कोई सोना चांदी जमा नहीं किया, मैंने एक बालिश जमीन मौला समझा रहा है मेरा। मैंने बात की थी, बहुत लोगों को बुरी लग गई थी कि जमीन पे क्यों बोले, मालूम है पता नहीं कितने कब्जा करके बैठे हुए, सबको बुरी लग गई थी मेरी बात। मौला क्या फरमा रहे, एक बालिश जमीन भी नहीं ली है। और जो हकीर गिजा है अली वो इस्तेमाल करता है, हकीर गिजा जो इसकी तारीफ मैंने कल की, जौ की रोटी और नमक और पानी, ये अली की गिजा थी। मैंने हकीर गिजा, जो सबसे हकीर गिजा है, मैंने उसका इंतखाब किया। मैंने तुम्हारी दुनिया से कुछ नहीं लिया, ना सोना चांदी जमा किया, ना महल बनाए, एक बालिश जमीन का अली रवादार नहीं। एक बालिश जमीन मैंने नहीं ली। एक बालिश क्या होती है? एक बालिश जमीन भी नहीं ली मैंने तुम्हारी दुनिया से। यह है हाकिम की पहचान, ये बता रहा है अली। कैसे नहीं, इतना आसान ना समझो। दीन का नारा लगाना, मदीने फाजिला कायम कर देना, कहना आसान है, सब यही कहते हैं, लेकिन अमल के मैदान में मुकायमत करना, साबित कदम रहना, मुझे तो लग रहा है कि चंद दिनों में कदम लड़खड़ा गए, डगमगा गए, झुकना पड़ गया। अरे कौम भूखे रहने को तैयार थी, कौम पे भरोसा तो करो। लेकिन मैंने जैसा अर्ज किया कि ना मालूम किस तरफ मामला जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे सब पर। दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम मोहम्मद अली के नाम के इज्तिमा से, फातिमा के नाम के इज्तिमा से ये मुल्क वजूद में आया है। हमेशा इसके लिए दुआ किया कीजिए कि परवरदिगार इसको ता कयामत बाकी रखे। हमें हुकूमतों से सरोकार नहीं हुआ करता, आज़ादारों हुकूमतों से कोई हमें सरोकार नहीं, लेकिन ये वतन, ये मट्टी, ये ज़मीन, ये मेरा है, ये मुल्क मेरा है। इस पर गासिब आके बैठे हैं, इस पर लुटेरे आके बैठे हैं, इस पर डाकू आके बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे हुसैन के नाना का दीन है, हुसैन के घर की शरीयत है, हुसैन के घर पे दीन नाजिल हुआ है, और हुसैन ही गरीबुल वतन कर दिया गया। गासिब बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, डाकू बैठे हैं, मुलुकियत आ गई, तो क्या हुसैन खामोशी से घर में बैठ गए? खामोशी से घर में बैठे नहीं ना, हुसैन निकले। ऐसा नहीं हो सकता कि इस दीन को ऐसे पामाल कर दिया जाए, हुकूमत रहे या ना रहे, आए या ना आए कभी, लेकिन मैं रास्ता बाकी रख के जाऊंगा, बचा के जाऊंगा, ताकि रास्ता ढूंढने वालों को परेशानी ना हो कि असल दीन है कहाँ। लिहाजा पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम जानता है कि हुसैन ही तो दीन है, हुसैन ही दीन है। ये मैं नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल भी कहेगा, जो जो पढ़ा लिखा है वो सब ये कहेगा, हुसैन ही दीन है। हुसैन ही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना है, क्योंकि हुसैन ना होता कुछ भी ना बचता, कुछ भी ना बचता। बस आज़ादारों में मंजिल की तरफ आ गया अपनी, इसीलिए हर कदम पर हुसैन यही कहते चले आ रहे हैं कि अपने नाना के दीन के दिफा के लिए निकल रहा हूँ, दीन को बचाना है, दीन खतरे में आ गया है। पहले छुप के फिस्क व फजूर होता था, अब इसने अलल ऐलान शुरू कर दिया है, अलल ऐलान। महरम ना महरम की तमीज़ ख़त्म हो गई, शराब आम कर दी गई, छुप के पी लेते थे पहले, अब खुल्लम खुल्ला। ये सारी खराबियाँ मैंने तो दो की तरफ इशारा किया है, पर ये तारीख़ें क्या क्या कुछ हो गया था, कहाँ तक नौबत पहुँच गई थी। अब हुसैन घर में बैठ जाए, खामोश रहें, अब हुसैन से मुतालबा किया जाए कि आप बैत कीजिए, यानी मेरी हाकमियत को तस्लीम कीजिए। हुसैन के तस्लीम करने का मतलब यह हुआ कि आज ये कुछ होते नहीं जो हम बैठे हुए यहाँ पर, कुछ भी ना होता, पता नहीं क्या हो चुका होता, दुनिया में इस्लाम के साथ क्या तमाशा बन चुका होता, अब तक कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। नहीं, हुसैन आए, क्योंकि नाना का दीन बचाना है तो निशानियाँ साथ होनी चाहिए ना। करबला एक अजीब जंग है, सहाबा की नुमाइंदगी मौजूद है, अहले बैत तो खुद ही मौजूद हैं, ताबेईन मौजूद हैं, तबे ताबेईन मौजूद हैं, ये सब करबला में सिर्फ 72 में, और सिर्फ यही नहीं, 75 में से एक तो खुद हुसैन है ना, बाकी 4 की नुमाइंदगी भी है, सबकी नुमाइंदगी। हसन जानते हैं कि मैं करबला में नहीं हूँगा, लिहाजा हसन की ख़ास नुमाइंदगी किसके हाथ में है? कासिम। قاسم نمائند، اور بھی بیٹے شہید ہیں لیکن قاسم خاص ہدیہ ہے، حسن کی نمائندگی کر رہا ہے، یعنی حسن قاسم کی لڑائی، حسن کی لڑائی. کل میں پڑھ چکا، علی جانتے ہیں کہ میں اس معرکے میں شریک نہیں ہوں، تو کیا کیا، کیسے شرکت کی جائے؟ عباس نیابت کر رہے ہیں اپنے بابا علی کی. ماں زہرا جانتی ہے کہ میں اس وقت موجود نہ رہوں گی، ثانیہ زہرا موجود ہے زہرا کی نمائندگی کرنے کے لیے. وہی مقام ہے زینب کا حسین کے سامنے، حسین کی بارگاہ میں جو رسول کے سامنے فاطمہ کا مقام تھا، یہی مقام ہے حسین کے سامنے اس کی بہن زینب کا موجود ہیں. تو اب مجھے بتائیے، جو رسول سب کو خبریں دے رہا ہے، کربلا کا واقعہ بتا رہا ہے، خود بھی رو رہا ہے، دوسروں کو بھی رلا رہا ہے، کیا وہ رسول اہتمام نہیں کرے گا کہ میری بھی نمائندگی ہو؟ اسی لیے واقعہ کربلا سے بہت پہلے مدینے میں ہی مشہور ہو چکا تھا حسین کا بیٹا شبیہ پیغمبر. کیا لقب تھا علی اکبر کا؟ شبیہ پیغمبر. جب جوان نکلتے تھے نا مدینے میں، بزرگ صحابہ کہتے تھے کہ رسول کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جوان کہتے تھے کیوں نہیں، یہ خواہش کس کو نہیں ہوگی؟ تو کہ بس حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں حسین کے نانا رسول خدا کی شبیہ ہے. لہذا حسین کے ساتھ چلنا بھی ان مدینے کے جوان فخر سمجھتے تھے. اور ماں کا تو عالم یہ تھا کہ ادھر علی اکبر گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے، ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، تحت الحنک ڈال لے، کیوں؟ کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اپنے بچوں کی ہم نظریں اتارتے ہیں نا، بس اسی بنا پہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ماں کی یہ کیفیت ہوتی ہوگی، کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، ایسا حسین ہے. عاشور کے بعد، دو دن کے بعد، جب قیدی بنا کر اسیروں کو لایا گیا کوفے کے بازار میں، آگے آگے نیزوں پر سر تھے شہدا کے، ایک موڑ پر، کوفے کے ایک موڑ پر خواتین کا ٹھٹ لگا ہوا تھا، تماشا دیکھنے جمع ہوئی تھیں. یہ وہی انہی اور مردوں کی خواتین ہیں جن سب نے بے وفائی کی ہے حسین کے ساتھ، ایک ایک سر کو دیکھ رہی تھی. جو ہی نگاہ پڑی تھی علی اکبر کے چہرے پر، علی اکبر کے سر پہ، منہ پیٹ پیٹ کے رو رہی تھی، چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. گھٹ گھٹ کے پرسانا دینا زیادہ رو، شب عاشور ہے نا، گھٹ گھٹ کے پرسانا دینا. جہاں تک ہو سکے گا دعا کر کے پڑھتا ہوں ہمیشہ یہ مصائب علی اکبر کے، پروردگار مجھے توفیق دے دے کہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں شبیہ رسول کا پرسا دے دوں. ہمیشہ انتظار کرتا ہوں میں ایک سال جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے، انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ تاریخ آئے، اللہ مجھے توفیق دے، شہزادے علی اکبر کو دامن تھام لوں گا، قیامت کے دن دامن تھاموں گا شہزادے علی اکبر کے، اے آقا زادے، اے مولا صاحب، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری سماعت نے کام کرنا شروع کیا ہے، جب میں سنتا تھا علی اکبر کی شہادت میری حالت عجیب ہو جاتی تھی. علی اکبر کی شہادت ایک طرف، علی اکبر کی شہادت پر جو حسین کا حال تھا نا، وہ مجھ سے سنا نہیں جاتا تھا، وہ مجھ سے نہیں سن، میں منبر پہ بیٹھا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے یاد ہے وہ منظر، وہ دن، وہ تاریخ مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میری عجیب کیفیت تھی، میں سارا دن روتا رہا تھا، علی اکبر کی شہادت اپنی جگہ حسین کی حالت پہ روتا رہا تھا کہ جو حسین کا حال ہوا تھا علی اکبر کے لاشے پر. بس عزادارو، یہی شبیہ پیغمبر، شب عاشور، جناب ام لیلہ اس سے اقرار لے رہی ہے، میرے لال دیکھ، میری لاج رکھ لے اپنی دادی زہرا کے سامنے، میری لاج رکھ لے، کل قربان ہو جا اپنے بابا پہ. حالانکہ ہر ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب بیٹا جوان ہو تو اس کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے، مگر اب کوئی خواہش نہیں علی اکبر، بس ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے بابا پر قربان ہو جا. اور علی اکبر کہتے ہیں مادر گرامی، بھلا ہو سکتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کوئی مصیبت اس کے نزدیک آ جائے؟ باپ کا قوت بازو ہوتا ہے نا، یہ جوان بیٹا अली अकबर बता रहा है, मैं अभी जब तक जिंदा हूँ किसी के मजाले मेरे बाबा के नज़दीक आ जाए। रात भर मुनाजात करते रहे, शबेदारी होती रही खयाम हुसैनी में। फज्र का वक्त हुआ, हिलाल इब्ने नाफे या नाफे इब्ने हिलाल, ये दोनों सहाबी हैं, हुसैन के दोनों करबला के शहीद हैं। इन्हीं दोनों का तस्करा है कि इनमें से कोई एक मौज़िन हुसैन था, हुसैन के लश्कर का मौज़िन था। हिलाल आगे बढ़े अजान देने के लिए, हुसैन ने रोक दिया, हिलाल आज की अजान आप नहीं देंगे। हिलाल ने दस बस्ता अर्ज की, मौला क्या मुझसे कोई खता हुई है, मुझसे कोई गलती हुई? सीने से लगा के कहा, नहीं हिलाल इब्ने नाफे, आपसे कोई खता नहीं हुई, लेकिन चाहता हूं कि आज की अजान अली अकबर की आवाज में हो, चाहता हूं कि आखिरी अजान अपने नाना की आवाज में सुनूं। बुलाओ अली अकबर को, कहां है अली अकबर? ऐलान हो गया कि आज सुबह की अजान अली अकबर देंगे। खबर खेमों तक पहुंच गई, बीबियों तक। इधर अली अकबर की आवाज गूंजी, तकबीर बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। उधर बीबियां खेमों में पछाड़े खाने लगी। जानती हैं बीबियां कि अब ये आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी, यह आखिरी अजान है जो अली अकबर दे रहा है। अजादारो, नमाज ख़त्म की लश्कर हुसैनी ने, बस अभी नमाज तमाम हुई थी, हमले आम हुआ, जंग मगलूबा हुई, अंसार हुसैनी ने तारीख रकम कर दी, नैज़े ज़मीन पर इस तरह से गाड़े कि जितने तीर खेमों की तरफ फेंके जाते थे नैज़ों से टकरा के खेमों के पीछे चले जाते थे, आधा लश्कर कट गया हुसैन का, आधे अंसार शहीद हो गए, लेकिन कोई तीर खेमों तक जाने न दिया। ये जंग मगलूबा खत्म हुई, हमले आम पसपा किया अंसार हुसैनी ने, निस्फ बाकी बचे थे, सबसे पहले अली अकबर आगे आए, तन बतन जंग की बारी आई, अली अकबर आगे आए, बाबा इजाजत दरकार है, पहले मैं मैदान में जाऊंगा। और हुसैन ने भी इजाजत दी, जाओ बेटा अली अकबर, सबसे पहले तुम मैदान में जाओ। लेकिन कैसे जाते अली अकबर? इधर अकबर मैदान में जाने के लिए तैयार हुए, अंसारे हुसैनी ने सफ बांध ली, मौला ये कैसे होगा, हम जिंदा हों और शबीह पैगंबर खाक और खून में गलता कर दी जाए, आपके नाना रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। नहीं जाने दिया अंसार ने, अंसार खत्म हुए। फिर अली अकबर ने जाना चाहा, औलाद जाफर वकील सामने आ गई कि ए चचा जान, ए इब्ने अम, ये नहीं हो सकता कि हम हमारे होते हुए शबीह पैगंबर मैदान में चली जाए, क्या मुंह दिखाएंगे हैदर कर्रार को, क्या मुंह दिखाएंगे रसूल खुदा को। अरे किसी ने जाने नहीं दिया अली अकबर को, कभी अली के बेटे, कभी हसन के बेटे, कभी उम्मुल बनीन के बेटे, जब कोई ना रहा, बस अली अकबर है या हुसैन है या गहवारे में अली असगर, कोई नहीं बचा। अब अली अकबर आए, बाबा अब जाऊं मैदान में? मेरा दिल कहता है हुसैन ने बड़ी हसरत से कभी दाएं कभी कभी दाएं कभी बाएं, शायद कहीं से कोई आवाज आ जाए, अभी अली अकबर नहीं जाएगा। लेकिन अजादारो, इंसाफ से बताओ, हुसैन खुद ही तो सबके लाशें उठा कर लाया है, अपने बेटे को कैसे रोकेगा? बस हसद भरी निगाहों से देखा और इतना कहा, मेरे लाल जाओ मैदान में, लेकिन पहले माँ से रुख्सत हो लो, माँ से इजाज़त ले लो। जनाब उम्मे लैला के खेमे में हाजिर हुए अली अकबर, मादरे गिरामी आखिरी सलाम के लिए आया हूँ, मैदान में जाने की इजाज़त दरकार है। माँ ने बड़े इत्मीनान से कहा, बड़े इत्मीनान से कहा, मेरे लाल अली अकबर, अरे मैं कौन होती हूँ इजाजत देने वाली, जिस फूफी ने पाल कर जवान किया है उससे इजाजत ले। कितनी मुतमईन है उम्मे लैला, कितनी मुतमईन है। लेकिन अभी देखिएगा, जब अली अकबर का लाशा आया तो उम्मे लैला का क्या हाल हुआ था। अली अकबर माँ के खेमे से निकले, फूफी के खेमे में आए, सलाम किया, फूफी ने जवाब दिया, रुख फेर लिया। अली अकबर हैरान होकर कहते हैं, फूफी गोपी अम्मा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आए हों आपने रुख फेर लिया, आज आपके अली अकबर से कोई खता हुई है। ज़ैनब घबरा के कहती है मेरे लाल भला तुझसे कोई खता हो सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ आज तू किस इरादे से आया है। अली अकबर तुझे मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दूंगी, मैंने तेरी जवानी बचाने के लिए अपने ओन मोहम्मद को कुर्बान। जानती हैं जैनब कि हुसैन के लिए क्या है अली अकबर, क्या गुजरेगी मेरे भाई पर जब अली अकबर मैदान में जाएगा। अली अकबर भी बेटा है भतीजा भी है, जैनब की आगोश का पला है। फौरन कहते फूफी अम्मा जब तक आप इजाज़त नहीं देंगी मैं मैदान में नहीं जाऊंगा, बस मेरा एक मसला हल कर दीजिए। पूछा सानिये जहरा ने इस मौके पर मैं तेरा कौन सा मसला हल कर सकती हूँ। फूफी अम्मा बस ये बता दीजिए आपका मर्तबा बुलंद है या मेरी दादी जहरा का। ए मेरे लाल है मेरे अली अकबर ये तूने कैसा सवाल कर दिया, कहाँ वो खातून महशर, कहाँ वो सैयद निसाए आलमीन, कहाँ मैं अदना सी कनीस उसकी। अब अली अकबर फरमाते फिर ये बताइए अगर क़यामत के दिन मेरी दादी ने आपसे सवाल कर लिया जैनब अपने अली अकबर को बचा लिया मेरा हुसैन ज़िबह कर दिया गया, फिर क्या जवाब देंगी। बस अज़ादारो जैनब को अपने अली अकबर पे प्यार आ गया, गले में बाहें डाली पेशानी के बोसे लिए आंखों से अश्क जारी हैं। मेरे लाल अब मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन जानते हो इतनी आसानी से अली अकबर मैदान में आए नहीं, हुसैन बाग था में बहुत देर तक खड़े रहे। क्यों इतनी देर लगी अली अकबर को आने में। अरे बार बार खेमे का पर्दा उठता था गिर जाता था, अली अकबर निकलने की कोशिश करते थे बीबियां वापस खींच लेती थी। कभी माँ खींच लेती थी एक बार और रुख अनवर की ज्यारत करने थे, कभी फूफी जैनब खींच लेती थी एक बार और सदके हो जाऊं तुझ पर, कभी कोई नन्नी सी बच्ची कदमों से लिपट जाती थी भैया ना जाओ भैया ना जाओ मुझे पानी नहीं चाहिए, जो मैदान में गया पलट कर वापस नहीं आया। ना जाने किस तरह अली अकबर रुख्सत हुए, हुसैन ने सवार कराया, खुदा हाफिज का जाओ बेटा अली अकबर बस हम भी कुछ ही देर में तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अली अकबर मैदान की तरफ रवाना हुए, चंद कदम बढ़ाए थे अस्पे वफादार ने, एहसास हुआ अली अकबर को कि पीछे पीछे कोई आ रहा। अब जो अली अकबर ने मुड़कर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर था। अली अकबर के सदके में मौला तुम सबके जवानों को सलामत रखे। दोनों हाथों से कमर था चला रहा, उतर आए अली अकबर घोड़े से वापस मुड़े, बाबा के हाथ था मैं, बाबा आप मुझे रुख्सत कर चुके अगर ऐसे मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे जंग करूंगा। बस बेताब होकर हुसैन ने अली अकबर को कलेजे से लगा के खींच लिया। और मेरा मौला फरमाता है मेरे लाल अली अकबर तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह कत्ल होने जा रहा होता तो तू समझ सकता था। अच्छा मेरे लाल जहाँ तक हो सके पलट पलट कर मुझे देखता जा। अली अकबर मैदान में गए, कुछ देर गुजरी, जैनब जानती है ना कि हुसैन के लिए क्या है अली अकबर। ये नहीं कहा कि अली अकबर का हाल बता, फिज़ा से कहा अम्मा फिज़ा ज़रा मेरे भाई की खबर तो ले, मेरे भाई की मेरे हुसैन की खबर तो ला। फिज़ा ने खेमे का पर्दा उठाया, कुछ देर मुशाहिदा करने के बाद फरियाद बुलंद की वाह हुसैना मेरा मौला हुसैन। बस ये सुनना था तड़प उठी जैनब, तड़प कर पुकारी फिज़ा मेरे भाई की खैर हो, अरे तू क्या देख रही है। फिज़ा फरमाती है बीबी मैं कैसे बताऊं, मेरा मौला हुसैन मैदान में कभी इधर दौड़ता है कभी इधर दौड़ता। कभी इधर दौड़ता जानते हो ना क्यों, इसलिए दौड़ रहा है कि जहां जहां अली अकबर हमला करने जाते हुसैन उसी समत में दौड़ना शुरू करते हैं कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहे। ना सुना गया ज़ैनब से, ना सुना गया ज़ैनब से अपने भाई का ये हाल। सजदे में चली गई ज़ैनब, सजदे में। महबूब, अली अकबर की शहादत का वादा याद है, लेकिन ऐ महबूब मुझसे मेरे भाई की हालत नहीं देखी जाती। ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, बस एक बार अली अकबर को हुसैन से मिला दे। सानिये जहरा की दुआ मुस्तजाब हुई, अली अकबर एक हमला करके वापस पलटे, बाबा की खिदमत में आए। बाबा से सवाल किया, बाबा मैंने कैसी जंग की? हुसैन ने सीने से लगा के कहा, बेटा बाबा हैदर कर्रार की जंग याद दिला दी, बहुत उम्दा तलवार चलाई, बहुत उम्दा शमशीर चलाई। अरे बाप ने तारीफ की, बेटे का सर फख्र से ऊंचा हो गया। अब अली अकबर कहते हैं, बाबा प्यास मारे डालती है, दो घूंट पानी के मिल जाते ना, अभी जंग के नक्शे को पलट कर रख देता। कितना बड़ा इम्तिहान है हुसैन का, कौसर का मालिक, साकिये कौसर का बेटा, जवानाने जन्नत का सरदार हुसैन और अली अकबर सा बेटा दो घूंट पानी का सवाल कर रहा है। मंजिल तो देखो हुसैन के इम्तिहान की। हुसैन फरमाते हैं, मेरे लाल पानी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, ऐसा कर अपनी जबान मेरे मुंह में दे दे। अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के मुंह में डाली, घबरा के वापस निकाली। कहते हैं, बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा खुश्क है। हुसैन ने अंगुश्तरी उतारी, अली अकबर को कहा, मुंह में रख ले बेटा, कुछ तसल्ली होती रहेगी। अली अकबर ने फिर हमला किया, मगर अब कुछ देर के बाद अली अकबर नजरों से उजल हो गया। चारों तरफ से लश्कर ने घेर लिया हुसैन का महलका, हुसैन का बद्रे कामिल। शाम की सियाह बदलियों में गहना गया, सियाह बादलों में छुप गया। हुसैन पुकार रहे, अली अकबर, अली अकबर कहाँ है, अली अकबर किस तरफ है? अली अकबर के कानों में आवाज तो आ रही है, मगर अली अकबर कैसे बताए? बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई, बाबा तेरे अली अकबर का खोद गिर गया, बाबा तेरे अली अकबर की सिपर गिर गई। वार पे वार बर्छियों के, तलवारों के, तीरों के, बेदम होकर अली अकबर घोड़े की पुश्त पे गिर पड़े। अपने बाहें घोड़े के गले में डाल दी, लड़खड़ा रहा है अली अकबर। अचानक हसीन इब्ने नमीर या सनान इब्ने अनस आगे बढ़ा, पूरी पर्ची अली अकबर के कलेजे में उतार दी। अब जो अपनी पर्ची वापस खींचना चाहिए, नैजे की अनी टूट कर कलेजे में रह गई। अब अली अकबर से घोड़े पे रुका ना गया, गिरते गिरते आवाज दी, या बताहु अलैका मिन्नी अस्सलाम। ऐ बाबा, अली अकबर का आखिरी सलाम, ये आवाज हुसैन के कानों से टकराई। हुसैन गश खा के खाके करबला पे गिर पड़े, सारी ताकत जमा की, खड़े हुए, फरियाद बुलंद की, या बुनैया अला दुनिया बादा कल अफा। ऐ मेरे लाल अली अकबर, तेरे बाद इस जिंदगानी पे खाक हो, इस दुनिया पे खाक हो। दो चार कदम चले हुसैन, फिर गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिर पड़े। जब हुसैन से चला ना गया, अपने आप को जलती रेत पर घसीटना शुरू किया हुसैन ने। अपने वजूद को खींच रहे हैं, पुकारते जाते हैं, या अली, या अली, या अली। बाबा, बाबा तेरे हुसैन पे बड़ा सख्त वक्त आ गया, मेरी मदद को आ, मेरी आंखों की बीनाई चली गई, मुझे अली अकबर का लाशा नजर नहीं आता। जाने किस तरह ठोकरें खाते हुए हुसैन पहुंचे अली अकबर के सरहाने। अभी कुछ जान बाकी है, सर उठा के जानों पे रखा, रुखसारों पे रुखसार रख के हुसैन ने कहा, मेरे लाल आंखें खोल, देख तेरा बाबा आया है, देख हुसैन आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, बाबा को सलाम किया, पूछा हुसैन ने, बेटा किस हाल में है? अली अकबर फरमाते हैं, बाबा नहजे की अनी टूट कर कलेजे में रह गई है, बहुत तकलीफ تکلیف میں ہوں، بہت اذیت میں ہوں۔ اچھا میرے لال، یہ امتحان بھی لے گا حسین، یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچی کا پھل نکالنے کے لیے۔ بس میرا یقین ہے کہ نانا بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گئے ہوں گے۔ ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، سب ہمت بڑھاتے ہوں گے۔ اور کوئی بعید نہیں، حسین نے اپنے بابا سے کہا ہو، بابا بابا آپ بتاؤ، خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچی کا پھل نکالا، پھل نکلا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا۔ اٹھا تو لیا مگر علی اکبر، مگر حسین سے چلا نہ گیا، واپس لاشا رکھا، سر تھام کے بیٹھ گیا۔ حسین میرے لال، میرے لال، میں تیرا لاشا کیسے لے جاؤں خیمے میں؟ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، آؤ ہاشمی بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے قتلگاہ کی طرف۔ سنو، ابھی میں نے ختم نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے۔ حسین نے علی اکبر کی باہوں میں، اپنے بازوؤں میں اپنے ہاتھ ڈالے، لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا۔ بچے پاس پہنچ گئے، بیبیاں جمع ہو گئی زینب کے خیمے میں۔ علی اکبر کا لاشا بچوں کی مدد سے حسین لے کر آئے، ماتم ہو رہا ہے۔ زینب نے دیکھا، زینب نے دیکھا علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، فضا سے کہا، فضا جا، علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو عزادارو، جب فضا ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی، کیا منظر تھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکراتی ہے، چلاتی جاتی ہے، لوگوں لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ